नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे 52 वाहनों को झंडे दिखाकर रवाना किया। यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली पुलिस ने लापता और चोरी किए गए 101 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए। दिल्ली यातायात पुलिस विभिन्न क्षेत्रों में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करेगी और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए नई दिल्ली से राहत सामग्री ले जा रहे 52 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय प्राकृतिक विपदाओं के कारण देश उलझन और तकलीफ में है। ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस मुसीबत से आगे निकलें। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पंजाब पूरे देश का अन्नदाता है और इस समय देश के किसान तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी दिल्ली उनके साथ खड़ी है।
दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से पंजाब के अपने भाई बहनों के साथ खड़ी है। हमने आज यहां से 52 ट्रक राहत सामग्री के, जो उनकी जीवन को फिर से स्टेबल करने के लिए चाहिए, उस सामग्री को आज हमने यहां से भेजा है। हमने दिल्ली सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए भी मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजे हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद और मनजिंदर सिंह सिरसा तथा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उपस्थित थे। श्री सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित आसपास के सभी पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है।
मुख्यमंत्री जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री सहित आसपास के सभी पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है और पंजाब के लिए विशेष तौर पे 5 करोड़ रुपए की राहत कोष में राशि के साथ आज 52 ट्रक में राहत सामग्री भी देने का काम किया है। दिल्ली सरकार पंजाब के नागरिकों के साथ खड़ी है।
वहीं श्री सिरसा ने कहा कि पंजाब केवल देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अनाज देता है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की स्थिति में सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है।
पंजाब देश का अन्नदाता है। दिल्ली की मानयोग मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के मुख्यमंत्री जी से बात करके जहाँ सरकारी कोष से 5 करोड़ रुपया उनकी कोष में देने का आह्वान किया, वहीं हम सबको भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा पंजाब के लिए जो आज जरूरत की चीजें हैं 52 ट्रक यहाँ से भेजे गए हैं और आने वाले दिनों में हम आपके साथ खड़े हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को पंजाब का दौरा करेंगे। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस दौरे की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र में जारी कार्यों की प्रगति का आकलन करने तथा तय समय सीमा पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पूर्ण और लंबित परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने भूमि उपयोग से जुड़े विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए भी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री बताया कि शालीमार बाग में जलभराव वाले क्षेत्रों में संचयन बिंदु स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा बाजारों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और झुके या टेढ़े पेड़ों को हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों की सतत समीक्षा और समयबद्ध पूर्णता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यमुना नदी के जलस्तर में आज गिरावट देखने को मिली, हालांकि यह अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। हमारी संवाददाता ने बताया कि पुराने रेलवे पुल पर आज शाम 5 बजे तक जलस्तर 205.42 मीटर दर्ज किया गया।
राजधानी के कुछ क्षेत्र अब भी बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं, इसलिए एहतियात के तौर पे निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में आश्रय दिया गया है। वहीं यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक जाने वाले संपर्क मार्ग अब उपलब्ध हैं। इस दौरान पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँवों का दौरा कर ग्रामीणों से संवाद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सहरावत ने बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर त्वरित समाधान के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की। इस दौरान उन्होंने शिविर में रह रहे लोगों को जरूरत की सामग्री जैसे चप्पल, साड़ी, टी शर्ट, ट्रैक सूट आदि वितरित किए। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
दिल्ली सरकार ने अब तक सितंबर के राशन कोटे का करीब 57% तक वितरित किया है। साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC योजना के तहत अब तक इस माह में 1,45,000 से अधिक प्रवासी लाभार्थियों ने अपना राशन प्राप्त किया है। यह जानकारी दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण की समीक्षा के दौरान दी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
समीक्षा बैठक के दौरान श्री सिरसा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उचित मूल्यों की दुकानों के बाहर प्रदर्शन बोर्ड के जरिए अनिवार्य जानकारी प्रदर्शित की जाए। इसमें सतर्कता कमेटी के विवरण, श्रेणीवार पात्रताएं, भंडारण की स्थिति, लाभार्थियों की संख्या, हेल्पलाइन नंबर और अन्य निर्देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य और आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि ONORC योजना के अंतर्गत पात्रता की जानकारी प्रमुखता से दिखाई जाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि राशन बिना किसी देरी के जरूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने जानकारी दी कि राजस्व विभाग के साथ समन्वय से जरूरतमंदों को तैयार भोजन के पैकेट भी दिल्ली सरकार उपलब्ध करा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि खाद्य सामग्री को जरूरत के अनुसार पहुंचाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं मौजूद हैं। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक वस्तु और सेवा कर में अगली पीढ़ी के सुधारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री का उद्देश्य एक अधिक कुशल और नागरिक हितैषी अर्थव्यवस्था बनाना है, जिसे 3 सितंबर को GST परिषद द्वारा सामान्य जन पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी देकर साकार किया जाएगा। इन सुधारों ने कई क्षेत्रों में कर दरों को कम करके नागरिकों का जीवन आसान बना दिया। नए GST सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम के दौरान शहर भर में लापता और चोरी किए गए 101 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाया। दक्षिणी दिल्ली के अपर पुलिस उपायुक्त सुमित कुमार झा ने बताया कि जिला पुलिस ने पिछले दो महीने में लगभग 400 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
जिसका भी फोन अगर खोता है या फिर चोरी होता है तो वो संचार साथी एक पोर्टल है, ऐप भी है, उस पर आप अपने IMEI नंबर को ब्लॉक करा सकते हैं ताकि आपका फोन जिसके भी हाथ में जाए वो उसको किसी इलीगल पर्पसेस के लिए मिसयूज ना करे। और उससे ये भी एक चीज सुविधा होती है कि जब भी आपका फोन किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के हाथ में आएगा तो वो आपको ट्रेस करके और आपको आपका फोन वापिस कर सकते हैं।
राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में 13 सितंबर को दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
इस दौरान शहरवासी अपने लंबित यातायात चलान या नोटिस के भुगतान के लिए शहर के विभिन्न न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल हो सकते हैं। ये शहर के 7 कोर्ट परिसरों में आयोजित होगा। इनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, 30 हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउस एवेन्यू शामिल है। संबंधित व्यक्तिगण अपने चलान को दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट traffic.dillipolice.gov.in/notice/lokadalat पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक कल सुबह 10 बजे से सक्रिय होगा और चलान की सीमा 1,80,000 के समाप्त होने तक उपलब्ध रहेगी। प्रतिदिन अधिकतम 60,000 चलान या नोटिस डाउनलोड किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी यातायात विभाग के सोशल मीडिया और वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
परिचालन कारणों की वजह से टनकपुर से दिल्ली जंक्शन तक चलने वाली ट्रेन संख्या 12035 पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस को आज के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा भूस्खलन के कारण ट्रेन संख्या 22477 और 22478 श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस भी रद्द हो गई है। ये ट्रेनें कल और परसों के लिए स्थगित रहेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसका आयोजन इस बार भारतीय रेल के साथ किया गया।
फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का मूल विषय इस बार गर्व से स्वदेशी था। ओलंपिक पदक विजेता और पहलवान साक्षी मलिक ने झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक सांसदों के साथ साथ खिलाड़ियों और आम जनता ने हिस्सा लिया। वहीं स्टेडियम में खेल से जुड़े स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए। इस अवसर पर श्री मांडव्य ने कहा कि संडे ऑन साइकिल अब एक जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने रेखांकित किया कि साइकिल पर GST अब 18% से घटकर 5% हो गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका हिस्सा बन पाएंगे। उन्होंने जनता से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की भी अपील की।
साइकिल पर GST 18% था, यानी कि साइकिल अभी 350 से 400 रुपया सस्ती हो चुकी है। तो चलो, प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी के मंत्र को साकार करने के लिए, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़िए और अपने स्वयं को स्वस्थ रखिए।
वहीं केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि इस अभियान के तहत सरकार पिछले एक वर्ष से स्वास्थ्य तथा साफ पर्यावरण का संदेश लोगों तक पहुंचाते आ रही है।
दिस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट वन ईयर संडे ऑन साइकिल बाय अवर कैबिनेट मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी, एंड वी आर ट्राइंग दैट ऑन एवरी संडे दैट ऑल पीपल शुड बी पार्टिसिपेट इन द संडे ऑन द साइकिल इवेंट, बिकॉज दिस इज द मैसेज फॉर फिटनेस, दिस इज द मैसेज फॉर क्लीन एनवायरमेंट and also solution for traffic also, solution for pollution also.
फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल राजधानी में हर रविवार मनाया जाता है। स्वस्थ जीवन शैली, यातायात सुव्यवस्था और प्रदूषण के रोकथाम के साथ अब स्वदेशी सामानों का अनुसरण भी इसका आयाम बन चुका है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
सरकार ने सोशल मीडिया पर फेरबदल करके प्रसारित किए जा रहे एक वीडियो को खारिज कर दिया है, जिसमें भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है। वीडियो में भ्रामक रूप से यह दावा किया गया है कि जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के लड़ाकू विमान और सैनिक मारे जाने की बात कही है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में स्पष्ट किया कि यह AI द्वारा तैयार किया गया फर्जी वीडियो है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी की ज्योति जोत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु अमरदास जी करुणा और दया के सागर थे, जिनकी दिव्य शिक्षा और महान आदर्श सभी को सत्य, सेवा और समर्पण के मार्ग पर सदैव प्रेरित करते रहेंगे। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आज सुबह कड़ी धूप रही, हालांकि दोपहर के बाद हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे 52 वाहनों को झंडे दिखाकर रवाना किया। यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली पुलिस ने लापता और चोरी किए गए 101 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए। दिल्ली यातायात पुलिस विभिन्न क्षेत्रों में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करेगी और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।